ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। स्वास्थ्य बीमा के तहत लक्षित वर्ग के सेवाग्राहियों को अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने और स्रोत प्रबंधन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। जापान की 4 दिवसीय औपचारिक यात्रा पूरी कर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल लौटे स्वदेश। चुनाव को प्रभावित कर सकने वाली भ्रामक सूचनाओं के नियंत्रण के लिए आयोग कार्य कर रहा है, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी द्वारा जानकारी। और इजराइल द्वारा गजा पर हमले, 6 बच्चों समेत 17 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में लक्षित वर्ग के सेवाग्राहियों को अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नियमों के तहत एक द्वार प्रणाली लागू की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज स्वास्थ्य बीमा बोर्ड की वर्तमान स्थिति और भावी रोडमैप पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं में गरीब, असहाय, वंचित और वृद्ध नागरिकों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए नीतिगत सुधार आवश्यक होने की बात कही। प्रधानमंत्री कार्की ने यह भी जानकारी दी कि बीमा से जुड़े सेवाग्राहियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक नियम कानून तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा गौतम ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड द्वारा स्रोत सुनिश्चित किए बिना नागरिकों को असीमित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से राष्ट्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के कार्यकारी निदेशक डॉ कृष्ण प्रसाद पौडेल ने जानकारी दी कि आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए 26 अरब 52 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जापान की औपचारिक यात्रा पूरी कर आज स्वदेश लौटे हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अति विशिष्ट कक्ष में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, मंत्रियों तथा सुरक्षा निकायों के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर नेपाली सेना ने उनके सम्मान में सलामी अर्पित की। जापान सरकार के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पौडेल, प्रथम महिला सविता पौडेल सहित नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नेपाल और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर जापान में आयोजित विशेष समारोह में भाग लेने के लिए रविवार रात वहां प्रस्थान हुए थे। नेपाल और जापान के बीच 1 सितंबर 1956 को कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने कहा है कि आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन में प्रविधि के माध्यम से होने वाले संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के प्रतिनिधियों के साथ किए गए समझौता पत्र के आदान प्रदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन के पक्ष में बने सकारात्मक माहौल को प्रभावित होने से बचाने के लिए ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है। टिकटॉक के साथ समझौता होने के बाद इसके माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन और भ्रामक सूचनाओं को रोकने में सहयोग मिलने का विश्वास कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भंडारी ने व्यक्त किया। नेकपा एमाले ने चुनाव प्रचार प्रसार की गतिविधियों में सोशल मीडिया के दुरुपयोग में वृद्धि होने पर आपत्ति जताई है। नेकपा एमाले ने कहा है कि विभिन्न दलों के नेताओं और उम्मीदवारों के खिलाफ प्रविधि का दुरुपयोग कर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है और ऐसे कदम उठाने वाले कलाकारों या किसी भी व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई के दायरे में लाने की मांग की है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से नेपाल के लिए श्रीलंका की नवनियुक्त राजदूत रुआनथी डेलपीटिया ने आज शिष्टाचार भेंटवार्ता की। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच द्विपक्षीय हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। भेंट के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने नवनियुक्त राजदूत को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं व्यक्त की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल से संयुक्त राष्ट्र संघ के मादक पदार्थ एवं अपराध नियंत्रण कार्यालय के दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्रिश्चियन होल्ज ने शिष्टाचार भेंट की। गृह मंत्रालय में हुई इस भेंट के दौरान मंत्री अर्याल ने मादक पदार्थ नियंत्रण सहित विभिन्न क्षेत्रों में नेपाल को यूएनओडीसी द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और यूएनओडीसी के साथ सहयोग को और अधिक विस्तार देने का विश्वास जताया। वहीं यूएनओडीसी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि होल्ज ने नेपाल सरकार के साथ सहयोग को निरंतर जारी रखने की बात कही। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान भरने वाले टर्किश एयरलाइंस के विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिलने पर इसे भारत के कोलकाता में सुरक्षित उतारा गया। विमानस्थल के खोज और बचाव समन्वय केंद्र द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस्तांबुल के लिए उड़ान भरने वाला THY-727 विमान ने आज दोपहर उड़ान भरते समय ऊंचाई लेने के दौरान दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत काठमांडू अप्रोच कंट्रोल को दिया था। कुछ समय अंधेरे में होल्ड करने के बाद विमान को कोलकाता डायवर्ट किया गया और इसे सुरक्षित रूप से उतारा गया। ये जानकारी केंद्र ने दी। विमान में 225 यात्री और चालक दल के 11 सदस्य कुल 236 लोग सवार थे और सभी यात्री तथा चालक दल सुरक्षित है। ये जानकारी हवाई अड्डे के कार्यालय ने दी। झापा के दमक में एक ट्रिपर द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से दो लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार इलाम चूलाचूली वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 22 वर्षीय प्रवेश राय और उसी जगह के 19 वर्षीय जन्म राय की मृत्यु हुई है। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय झापा ने दी। पुलिस के अनुसार दमक एक बरगाछी स्थित आंतरिक सड़क खंड में ट्रिपर और मोटरसाइकिल की टक्कर से ये दुर्घटना हुई और दोनों की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल ने गजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में हमले किए हैं जिनमें 17 फलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा सिटी और खान यूनिस इलाकों में मारे गए लोगों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल की सेना का दावा है कि ये घटना तब हुई जब उत्तरी गजा में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इस दौरान इसराइल का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना ने कहा कि युद्ध विराम के स्पष्ट उल्लंघन के जवाब में वक्तरबंद गाड़ियों और हवाई जहाजों ने उस इलाकों में जवाबी हमले किए। इसराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर लगभग रोजाना युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ये युद्ध विराम 10 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ था। गजा की हमास द्वारा चलाई जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइली गोलीबारी से अब तक कम से कम 539 लोग मारे गए हैं, जबकि इसराइल की सेना का कहना है कि फलिस्तीनी हमलों में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था जब हमास ने दक्षिणी इसराइल पर हमले कर दिए थे। उस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसराइल ने इस हमले के जवाब में गजा में सैन्य अभियान शुरू किया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य बीमा के तहत लक्षित वर्ग के सेवाग्राहियों को अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने और स्रोत प्रबंधन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। जापान की 4 दिवसीय औपचारिक यात्रा पूरी कर राष्ट्रपति रामचंद्र पॉरल लौटे स्वदेश। चुनाव को प्रभावित कर सकने वाली भ्रामक सूचनाओं के नियंत्रण के लिए आयोग कार्य कर रहा है, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी द्वारा जानकारी। और इसराइल द्वारा गजा पर हमले, 6 बच्चों समेत 17 फलिस्तीनियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।